महर ने सारी जानकारी निकाल ली थी। अब उसका शक मनोहर लाल पर जा रहा था। महर को लग रहा था कि आदित्य के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे कालू भाई का ही हाथ है। महर ने आदित्य को पूरी बात नहीं बताई थी। वो आदित्य को और तनाव देना नहीं चाहता था। उसे पता था कि आदित्य पहले ही बहुत परेशान था। महर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो इसी मामले के बारे में सोच रहा था। उसका ध्यान सिर्फ इसी मसले की तरफ था। वो जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लेना चाहता था। ठीक उसी समय उसके फ़ोन पर निशा का मैसेज आया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। महर ने निशा से कह दिया था कि वो किसी भी हाल में उसे फ़ोन ना करे, सिर्फ मैसेज पर बात होगी। फिर महर ने उसे ये भी कह दिया था, अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करती है तो थोड़े दिनों के लिए वो घर से बिल्कुल बाहर मत निकले। वैसे भी निशा के परिवार ने निशा को समझा दिया था कि इस समय उसकी जान को भी खतरा है, और फिर महर के मना करने के बाद तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी। महर ने उसका मैसेज पढ़कर वापस मैसेज किया, तुम तो घर में हो तो हम वहाँ पर कैसे मिल सकते हैं? मैं क्या कहूँगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? थोड़ा तो दिमाग से करो निशा। मुझे नहीं पता, कैसे भी मुझसे मिलने आ जाओ वरना मैं घर से बाहर आ जाऊँगी, और तुम्हें पता है जो मैं कहती हूँ मैं वही करती हूँ। वो महर को धमका रही थी क्योंकि उसे पता था कि महर कभी भी उसकी जान खतरे में नहीं डालेगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह महर को ब्लैकमेल करने के मूड में थी। अगर दिन को नहीं आना तो चुपके से रात को आ जाना मुझसे मिलने के लिए। आना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं छुपकर तुमसे मिलने कैसे आऊँगा? इतनी सुरक्षा है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गार्ड तो मुझे मार डालेंगे। तो फिर कोई तो रास्ता निकालो मुझसे मिलने का, वरना मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। महर निशा के मैसेज पढ़कर हंसने लगा। पूरी की पूरी नौटंकीबाज है, अब दिल तुम पर आ गया है तो क्या करूं? मगर उसे पता था कि निशा से मिलने तो उसे जाना पड़ेगा। पता नहीं उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं, सच में मुझसे मिलने के लिए घर से बाहर ही ना आ जाए। मुसीबत तो एक ही बहुत थी, उसके लिए अब वो कोई और मुसीबत नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें घर पर ही मिलने आ रहा हूँ, बाहर मत आना। उसका मैसेज पढ़कर निशा ने वापस हार्ट वाली स्माइली का मैसेज भेजा था, रा। वो खुश हो गई थी, महर उसे मिलने आ रहा था। अधिराज को महर का मैसेज आया था। महर अधिराज से मिलना चाहता था। महर को अधिराज से कोई काम था, चलो इस बहाने निशा से भी मिल लेगा। महर शाम को 7 बजे राजवंश मेंशन पहुंचा था अधिराज से मिलने के लिए। निशा तो काफी देर से तैयार हो चुकी थी। अनीता जी उसे कई बार कह भी चुकी थी, तुम्हें जाना कहाँ है जो तुम तैयार हो रही हो? देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारा बाहर जाना मना किया हुआ है। थोड़े दिनों का खतरा है निशा, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बेटा तुम घर में ही रहो। बस मॉम, ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, मैं घर पर ही हूँ। मगर ये वेस्टर्न कपड़े छोड़कर साड़ी पहनने का ख्याल कहाँ से आया? मेरे कहने से तो तुमने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। अनीता जी उसे देखकर हैरान हो रही थी। साड़ी हमारी नेशनल ड्रेस है, इसे भी पहनना चाहिए, इसलिए मैंने आज साड़ी पहन ली। निशा की बातें अनीता जी के सर के ऊपर से जा रही थी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, ये सोचकर अनीता जी नीचे चली आईं। निशा काफी देर कमरे में तैयार होकर बैठी रही। उसे महर का इंतजार था, पर जब महर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मैं अभी के अभी घर से बाहर जाती हूँ, जब मुझे गुंडे उठाकर ले जाएंगे तब पता चलेगा इसे। निशा जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसके कानों में महर की आवाज़ पड़ी। उसने ऊपर से देखा, महर हाल में अधिराज के साथ बैठा हुआ था, बाकी परिवार भी वहीं पर था। निशा को बहुत गुस्सा आया, मुझे यहाँ आकर मैसेज नहीं किया और सभी के साथ बात हो रही है, एक मुझे छोड़कर सभी की फिक्र है इसे। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हाल में आ गई, मगर महर ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने आते हुए जानबूझकर आवाज़ की, मगर फिर भी महर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतें देखकर अनीता जी बोल पड़ी, क्या बात है निशा, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं मॉम, मुझे पता नहीं था महर जी आए हुए हैं, मैं तो वैसे ही नीचे आई थी, निशा ने अनजान बनते हुए कहा। नमस्ते निशा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपकी बहन तो यहाँ पर नहीं है, फिर आप क्यों आए हैं? निशा की बातों से उसका गुस्सा झलक रहा था। निशा, तुम महर से कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? अनीता ने निशा को टोका था। कोई बात नहीं आंटी, सही बात है, माना तो यहाँ पर नहीं है, तो शायद इन्हें लगा मैं किसी से मिलने आया हूँ। असल में निशा जी, मुझे आप ही से काम था, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? महर निशा से बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या काम था आपको मुझसे, मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ? मुझे दवाइयों के बारे में आपसे मुझे मदद चाहिए थी, फैक्ट्री का कोई काम था, आपने तो इस पर स्टडी की है। ऐसा करते हैं, आप ऊपर मेरे कमरे में आ जाइए, आराम से बात होगी, कहकर निशा ऊपर जाने लगी। निशा के ऐसा कहने पर महर इधर उधर देखने लगा। ये लड़की सबके सामने मुझे कमरे में बुला रही है, आज तुझे पक्का मार पड़ेगी मुझे, महर सोच रहा था। बस थोड़ा ही काम है आपसे, यहीं पर बात कर लो निशा जी, कमरे में क्या करेंगे? महर ने निशा को टोका। महर जाओ, कोई ऐसा काम देना ये पूरा दिन लगी रहे, क्या बताऊँ मैं, पूरा दिन दिमाग खा जाती है हम सबका। अधिराज महर से हंसने लगा, मगर महर फिर भी नहीं उठा था। जाओ महर, चले जाओ, उसके कमरे में जाकर ही बात कर लो, तुमसे बात करने के बहाने ही फोन तो छोड़ेगी, वरना पूरा दिन फोन उठाए रखती है ये लड़की, अनीता जी ने कहा। महर उठकर निशा के पीछे चला गया। महर को निशा के पीछे जाते हुए नैना ध्यान से देख रही थी। उसने धीरे से अधीराज से कहा, आपको नहीं लगता कि निशा महर के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है? वरना वो किसको अपने कमरे में बुलाती है? वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पहले से जानते हैं, इसलिए वो उससे मिक्सअप है, अधीराज ने कहा। नैना को निशा और महर का कोई चक्कर है ऐसा लग रहा था, मगर वो खुलकर बोल नहीं पा रही थी। नैना ने महर के कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। निशा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अच्छा थोड़ी लगता है। तो क्या हुआ? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। तुम अपनी मर्जी से आए हो, जाओगी तुम मेरी मर्जी से, कहकर निशा इठलाने लगी। कुछ तो शर्म करो निशा, तुम्हारे भाई कहाँ है इस वक्त? तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है? पुलिस आदित्य को हर तरफ ढूंढ रही है, मगर उसकी कोई खबर नहीं। तुम्हें अपने रोमांस की पड़ी है, मुझे उल्लू बना रहे हो, तुम और अधिराज भाई मिलकर। मुझे पता है कि तुम दोनों को पता है आदित्य भाई कहाँ है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि हमें पता है तुम्हारी बहन के पति के बारे में? तुम्हें ना पता हो ऐसे में तुम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते, उसे ढूंढ रहे होते। और अधिराज भाई के चेहरे से भी नहीं लग रहा कि उसे कुछ नहीं पता। आप लोगों ने मुझे जो घर पर रखा हुआ है, मैं क्या? मॉम और भाभी को भी कहीं बाहर जाना मना है, इसका मतलब साफ है कोई बड़ी खतरे की बात है। इतना तो मैं समझती हूँ, निशा ने मेडिकल की पढ़ाई की है, उसमें बहुत दिमाग लगता है, मैं कोई बिना दिमाग वाली नहीं हूँ, वो मेहर से कहने लगी।
उसके बाद यह सुनकर मेहर हंसने लगा। निशा, दीवारों के भी कान होते हैं, तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, इस बात को समझो। तुम्हें कुछ नहीं पता है इसका मतलब नहीं पता है। मैं चाहता हूँ जो लड़की मेरी जिंदगी में आए मेरी आंख का इशारा भी समझे, और मैं मानता हूँ तुम वैसी ही हो। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुराने लगी। तो फिर मुझे समय क्यों नहीं देते? यार समझो तुम, मैं तुम्हारे घर में बार बार कैसे आ सकता हूँ? ये मेरी बहन का ससुराल है, तुम उसके पति की बहन हो। आदित्य भाई का मामला निपट जाने दो और मुझे भी अपने काम में सफल होने दो, फिर मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊंगा, मेहर उसे समझा रहा था। निशा जाकर मेहर से लिपट गई। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे बिना मेरे लिए जिंदगी मौत बराबर है, हम दोनों लिव इन में रह लेते हैं। छोड़ो इस शादीवादी के चक्कर को, शादी हम फिर कर लेंगे, प्लीज प्लीज निशा। मेहर ने निशा का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। समझो तुम, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में नहीं रह सकता। सच पूछो तो मुझे लिव इन में रहना ही पसंद नहीं। जिस दिन मैं तुम्हें शादी करके ले जाऊंगा उसी दिन अपने साथ रखूंगा। हमारे रिश्ते का नाम तो होना चाहिए ना, ऐसी बच्चों जैसी बातें मत किया करो। वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए थे। निशा अपनी बातें बोल रही थी मगर मेहर का ध्यान आसपास ही था। चलो ठीक है निशा, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो आए हो? नहीं निशा, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज, और बालकनी का दरवाजा बंद कर लेना। उसने जोर से निशा को अपने गले लगाया और उसके कान में उसने कुछ कहा। फिर दोनों की आंखों में कोई बात हुई। फिर मेहर वहां से चला गया। जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था तो सामने नैना खड़ी हुई थी। बहुत जल्दी बात खत्म हो गई आप दोनों की। आपको जो निशा की मदद चाहिए थी उसके लिए वो मान गई क्या? जी दीदी, उसने कहा है वो मेरी मदद कर देगी। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना, वो मेहर से बोली। ठीक है, जरूर कहूंगा आपसे, कहकर मेहर बाहर की तरफ जाने लगा।